राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 अगस्त 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथाने में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। कल्पना करो कि ये कोई राजा थे, उस राजा ने अपने राज्य में रहने वाले एक रईस को, बड़े एक ताजीमदार को कहा कि अमुक दिन तुम्हारे को यहां से निकलना होगा। और तुम्हारे को साथ में कुछ ले जाने में जाएगा नहीं, हाथी तक थे उनकी ऐसी बड़ी ताजीम थी, हाथी घोड़ा रथ मोटर कुछ नहीं जान लेंगे, मकान तो साथ चले गए नहीं, धरती मामी मामूली ये जमीन ये तो चलेगी नहीं, दूसरे का धन होता है एक स्थावर एक जंगम, जो चलने फिरने वाला गाय भैंस भेड़ बकरी आदि घोड़ा ये भी नहीं ले जा सकोगे, और जो अपने पास के बहुत सा द्रव्य इकट्ठा करके ये भी नहीं ले जा सकोगे। एक बात की छूट होगी, चढ़ने के लिए घोड़ा होगा और आपके पोशाक पहनी हुई आपके पहने हुए गहने ये तो आपके पास है, इसके सिवाय कुछ ले जा नहीं सकोगे, अमुक दिन जाना है। उनका जो आ गया आपका जैसा हुक्म वैसे ही करेंगे, ठीक बात है। उसने बात मान ली तो बहुत ज्यादा थी, वो जितने में बड़े इतने बिक्री कर दी, जमीन बिक्री कर दी, गांव थे गई बिक्री कर दी, बहुत सस्ते में संपत्ति बिक्री कर दी, मकान बिक्री कर दिए, आठी घोड़े बिक्री कर दिए, गाय भैंस भेज बकरी बिक्री कर दिए, बिक्री करके और रुपये रुपयों के बना लिए रत्न, लाख लाख तीन तीन लाख के बढ़िया बढ़िया हीरे पन्ने ऐसे बना लिए, करोड़ रुपयों का धन हो गया, अरबों रुपयों का धन आया। उनसे पहले जाकर कहा साहब जरूरनाथ जी की अब हम जाते हैं, कहते तुम्हारे इतने गांव थे वो कहाँ है, सर जेब में है, हाथी घोड़े के पॉकेट में हमारे जेब में है, जमीन थी इतने थी वो, अब वो पूछते गए वो कहते गए बड़ी आश्चर्य की बात है, एक ईंट भी जमा पॉकेट में अंटती नहीं, और बड़े बड़े मकान मकान बड़ी मान तो वो सब हमारे जेब में। कहते भाई कैसे है कि महाराज सब बिक्री कर दी, बिक्री से रुपये ले लिए रुपयों से बहुत कीमती हीरे माणिक मोती लाल जिसमें भी बहुत विशेष विशेष कीमती रत्न तीन लाख ऐसे लोगों ऐसे हीरे हमने ले लिए उसकी बिक्री करके अब जहां जाएंगे जितना मिलेगा इससे वो खरीदेंगे वहां मेरे साठ बाट रह जाएंगे। आपका हुक्म था ने इस वास्ते कर दिया सभी तो साथ में कुछ भी नहीं चल सका। एक दिन यहां से जाना है साथ में कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। उसको दिया गया बाप चढ़ने का घोड़ा अपने पोशाक पहने हुए गहने पहने हुए कपड़े ये आपके साथ रहेगा और साथ नहीं रहेगा। तो हमारे को भी ऐसा हुक्म हो गया है कि वे जाओगे यहां से तो आप साथ में कुछ नहीं ले जा सकोगे शरीर भी नहीं ले जा सकोगे शरीर भी यही रह जाएगा। हम देखते हैं मरता है तो शरीर पड़ा रहता है और कुछ नहीं रहता सब साथ में चले गए। तो सब साथ में चले गए तो साथ क्या ले जावे फिर तो जैसे वह मकान जमीन हाथी घोड़े बगी मोटर बड़ी बड़ी चीजें नहीं ले जा सकते थे परंतु बुद्धिमानी से सबकी बिक्री करके और बड़े बड़े रत्न खरीद लिए वे जेबों में ले लिए और कह दिया सब हमारी जेब में हाथी है जेब में घोड़ा कि हमारे पॉकेट में है सब और गांव और हमारा जमीन के पॉकेट में। यह बुद्धिमानी की बात वो तो मना था नहीं पोशाक पहने हुए गहने ये तो मना थी नहीं ये नहीं जा सकते। इसी तरह से हम जाएंगे तो हम क्या करें साथ में पूंजी ले लें तो पूंजी कैसे लें कि साथ में जाने वाले पाकटों में भर लें जो हमारे कोट कुर्ता पहन के लिए उन पाकटों में भर लो तो पर कैसे भरें कहते वो राजा ने जैसे भर दिया ना वो भी राजा ही थे सारे के बड़े पहलगाव कोई घर थे ताजीमदार उन्हें लिए सभी ऐसे आप हम विचार करो कि साथ में चलने के पॉकेट कौन से हैं तो साथ में चलने का पॉकेट क्या है। इस वक्त एक कहानी बता कहानी वो होती है जो सच्ची भी हो झूठी भी ऐसी बनावटी भी हो इतिहास होता है शास्त्रों का वो तो ठीक बीता हुआ वैसे ही होता है जैसे आप रामायण सुनते हैं तो ये इतिहास ग्रंथ है और कहानी होती है कल्पना की। तो कहानी आती है ऐसी कि एक गांव था बहुत छोटा एक गांव उस गांव में लोग पढ़े लिखे थे रही किसके कागज भी कहीं से आ जाए तो एक अच्छे पढ़े लिखे थे उस गांव के पंडित थे कागज उसमें पढ़वा लेते मूर्त लिखवा लेते बच्चों का नामकरण करवा लेते कोई मर जाए उसके पीछे क्या करना है ऐसी उसे वो बातें पूछ लेते वो करवा देते थे। तो वो हो गए बीमार शरीर शांत हो गया। एक सब रहने वाला एक मार बोला कि मेरे कल कागज आया था वो कागज पंडित जी से पढ़वाना है कहते वो तो मर गए तो क्या है मेरा कागज तो पढ़ लेंगे मूर्ख कहेगा कैसा मूर्ख है वो मर गए कहते मरने पर कागज नहीं पढ़ लेंगे ना कोई नियम ले लिया नियम कहा गया मर गए तब मेरा कागज तो पढ़ देंगे मेरे पर तो बड़ी कृपा रखते हैं पढ़ देंगे। दौड़े दौड़े गया मेरे देरी होनी है होती है खेत जाना है और कागज पढ़वाना क्या समाचार है पढ़वाना है गया सब कहते पंडित जी कहा अरे चुप रह बस वो मर गए आमन मर में पड़े हुए हैं पंडित जी पंडित जी पंडित जी, अरे क्या करता है मूर्ख, बोलता है कैसे, समझता नहीं, समझे जा, अरे ये बोलता नहीं, मोल ले लिया, कैसा मूर्ख है, समझता नहीं, ये मर गए तो मरने पर बोलता नहीं, ये मरने पर बोलता है कोई, मेरी बात सुने, पंडित जी मेरे पास में गया, पंडित जी जो कागज है लोग हटाओ क्या करता है, कैसा कागज, मेरे पढ़ाना मेरी जरूरी बात है, बैठा दे उसको, और मेरे कागज तो पढ़ा लेते, हम सुन लेते, किसे बोलते नहीं, देखते भी नहीं और सुनते भी नहीं, कैसे देख तो लेते कम से कम कागज है, कैसे देखते भी नहीं, अच्छा देखना ही बंद कर दिया, सुनना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, पंडित जी क्या सोचते हो बड़े बड़े, क्या सोचे क्या है, तू कैसा मूर्ख है, समझता नहीं है, ये मर गए तो सोचना ही बंद कर दिया, समझना ही बंद कर दिया, कैसा मूर्ख, बंद क्या कर दिया, वो चले गए, इसमें से निकल करके चले गए, ये जो पीछे जैसे आदमी निकल जाए पीछे मकान पड़ा रहे, ऐसे शरीर पड़ा है और उसे चलेगा वो तो इस दृष्टांत से ये बात समझ में आती है कि देखने की शक्ति चली गई, सुनने की शक्ति चली गई, बोलने की शक्ति चली गई, करने की शक्ति चली गई, चलने की शक्ति चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, समझने की शक्ति चली गई, कहाँ गई, तो उनके साथ में ही गई, तो साथ में चलने के हमारे पास में ये ताकत है, ये ध्यान दे को सुनना बात को, हमारे कुर्ते पहने हुए हैं उनमें साथ में पॉकेट कौन सा है, जो देखने की शक्ति ये साथ जाएगी, सुनने की शक्ति ये साथ जाएगी, स्पर्श करने की शक्ति साथ जाएगी, सोचने की शक्ति भी साथ चली जाएगी, विचार करने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सब ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां अंतःकरण प्राण ये सब चले जाएंगे, कि प्राण में तो प्राण तो घोड़ा है, घोड़ा चलेगा घोड़े पर चढ़ के चले गए, प्राण के साथ में ये चल जाती है सभी, ये सब चल जाती, कैसी बात कर, जैसे प्राण निकल गए प्राण श्वास भी नहीं आते वे भी चले गए, और प्राणों के साथ में ये सामग्री चली गई, तो जैसे होना रईस को हुक्म हो गया कि जाना पड़ेगा, साथ कुछ नहीं ले जा सकते, तो हुक्म सबके लिए, आपके हमारे सब भाइयों के बहनों के सबके लिए हुक्म हो गया है, पता नहीं है कौन कब जाएगा इसका तो पता नहीं है, परंतु ये बात एकदम निश्चित है कि जन्म लियो जन्म मरणो परसी, जिसने जन्म लिया है उनका शरीर तो जाएगा, पक्की बात है, ये आपका मसानिया बसा उस समय में जितने थे उसमें एक भी आज नहीं है, और मकान जो बढ़ गए, घर बढ़ गए, जनता बढ़ गई, बहुत हो गए, परंतु एक ही आदमी पुराना नहीं, सभी नए नए, क्योंकि वो जो चले गए फिर आए कि वे भी चले गए, ऐसे चले जाते हैं, कोई आ गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ सिर काल से यही रिवाज रही सिर काल से यही रिवाज है यहाँ की रीत ही है यहाँ रहने की रीत नहीं है जाने की रीत आने जाने की रीत है आ गया चला गया आ गया चला गया आ गया चला गया ये बात है या रहने की रीत नहीं है तो भाई आपको और हमारे को भी जाना ही पड़ेगा इस देश में आए हैं तो इस देश की रीत को कैसे दूर करेंगे बताओ आपको भी जाना पड़ेगा हमारे को भी जाना पड़ेगा सबको जाना पड़ेगा ही तो अब क्या करें कि साथ में जाने की शक्ति क्या है, बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति, ये शक्तियां है, ये हमारे हैं पाकिट। तो जमीन जायदाद सब बिक्री करके इसमें पाकिट में भर लें। क्या भर लें? जैसे कोई गरीब है, अपाहिज है, आरक्षित है, दरिद्र है, अंगहीन है, ऐसे जो है उनको दया करके और दान करो, पुण्य करो, सहायता करो, अन्न की सहायता करो, कपड़े की सहायता करो, बीमार हो तो दवाइयों की सहायता करो। ये दया रूपी रतन अपने हृदय में भर लो, कृपा दया ये रतन बिक्री करके, धन को बिक्री कर दो, मकान को बिक्री कर दो, बोले अनाज बिक्री कर दो, रुपया बिक्री कर दिया, दे दिया वो रुपया की रुपया, इसके बदले में हमने दया भर ली, भीतर कृपा भर ली, अपना स्वभाव निर्बल बना दिया, शुद्ध बना दिया, दूसरों की सेवा करके और अपने भाव को शुद्ध बना लिया, तो हमारे साथ ये चलेंगे। और क्रूर कही, हिंसा करी, लड़ाई करी, झगड़ा किया, तो भाई ये कूड़ा कट भर जाएगा भीतर, स्वभाव में, बुद्धि में, मन में, आदत में ये पड़ जाएगी चीज। तो सबसे मुख्य आदत है, स्वभाव है, वो स्वभाव साथ जाता है। जिसका क्रूर स्वभाव है, दुख देने का स्वभाव है, वो जहाँ जाएगा वहीं दुख ही रहेगा, ऐसा देखा गया है। जिन बहनों में लड़ाई की आदत पड़ गई है, तो घर में लड़ाई कर ले, जल बहनों जल वहां लड़ाई कर ले, खेत में लड़ाई कर ले, मार्ग में लड़ाई कर ले, अब क्या की लड़ाई क्यों कर रही, अब आदत पड़ी हुई, तो आदत वो सब तंग करेगी, वहां तैयार मरने के बाद भी कर लेंगे। हमने एक संत बात सुनी कि जो ज्यादा लड़ने वाले हैं वे भाई हो चाहे बहन हो, दूसरों को दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं, खरीब खराब खाना पीना करने वाले हैं, जानवरों को खा जाते हैं मार करके, ऐसे करने वाले हैं, ऐसे जो दुष्ट होते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, ऐसा जो पाप करते हैं, वे पाप सब संग्रह होता है भीतर। धन तो आपका संग्रह होगा तिजोरियों में, बैंकों में, बक्सों में, अलमारियों में, परंतु उसके लिए किया हुआ झूठ, कपट, बेईमानी ये वहां नहीं होगी, ये साथ में चलने वाले पाकटों में होगा। ये मन साथ में जाए तो मन खराब कर लिया वो साथ में जाएगा, बुद्धि को मैली कर ली वो साथ में जाएगी, स्वभाव को आपने खराब कर लिया वो साथ में जाएगी। तो भाई संपत्ति जिन पाकटों में भरनी चाहिए, उन पाकटों में गंदगी गंदगी भर ली तो ये गंदगी साथ में जाएगी, अगाड़ी दुख देगी है, जहां हक पूछे हिसाब हजूर माही, जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी, वहां पूछेगा तुमने क्या क्या काम किए, उनका दंड भोगना पड़ेगा नरकों में बड़ा भयंकर, यहाँ तो मामूली की है, उनका पाप का भयंकर दंड होगा। आपने नहीं सुना ये इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम, ये खेत है, जो बढ़िया खेत होता है उसमें एक दाना डाले तो उतना कितना दाना हो जाता है। आजकल तो बाजरा भी विदेश आ गया, जिसमें एक सिट्टी निकले, एक थोड़ी बात, एक सिट्टी लंबी निकली, एक सिट्टी हमने देखा है। खेतों में बाजरी होती है गरम धोरों पर, उसको अच्छी 100-100 सिट्टा एक में, शीतकाल तक, काती मगसर तक छोटी छोटी सिट्टियां निकल, दाना मोटा मोटा उसका, छोटी छोटी सिट्टियां 100-100 एक धरे, दाना एक पड़ा और इतनी बात निकले ऐसी। तो इधर से ये जो शरीर है, ये खेत है, बहुत उपजाऊ खेत है ये, सदा की दरिद्रता मिट जाए। खेत में, खेत में अनाज पैदा होता है तो इतना धन पैदा होता है जिसमें सब खर्चा निकल जाता है और फिर जमा हो जाता है। तो ये शरीर बहुत बढ़िया क्षेत्र है। 84 लाख जूनी में एक ये मनुष्य जूनी है, बहुत बढ़िया खेत है, बड़ा उपजाऊ है। कितना उपजाऊ है कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्म इस एक जन्म में सब भस्म हो जाते हैं। तत्व ज्ञान हो जाए तो भगवान की हो जाए, भगवान की शरण हो जाए तो भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पापेभ्य में भी सर्व शब्द है, पापेभ्य यह शब्द है ना, इसमें सर्व शब्द है। फिर कहते हैं सर्व पापेभ्यो, कोई बैम न रह जाए, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। अनेक जन्मों में अनगिनती के पाप है, संपूर्ण पापों से मुक्त मेरी शरण हो जाएगी। हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ, माम आश्रित्य ये संसी है। केवल भगवान के चरणों का आश्रय ले ले और भगवान का होकर भगवान का भजन करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज बिगड़ी जन्म अनेक की, वर्ष नहीं की नहीं, एक दो वर्ष, एक दो महीना, एक दो दिन, चार दिन, दस दिन, बीस दिन, हजार दिन नहीं, सैकड़ों हजार दिन बिगड़ी जन्म अनेक की, बहुत जन्मों की बिगड़ी हुई बात सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज भी अभी 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 कैसा उपाय था, अभी आज हो राम को नाम रे भगवान का हो जाए, एकदम इस अहंता को बदलो, मैं भगवान का हूं। ये बदलना आता है, आपको आता है, हमारे को आता है, बहनों को तो बहुत विशेष आता है, इनको ये बदलना आता है। बदलने की एक क्रिया, एक बदलने की अटकल, एक बदलने की विद्या है। आपके पास भी है, सबके पास, हमारे पास, सबके पास है। क्या वो बदलने की क्या विद्या है? ये लड़की होती है ना, कुंवारी छोरी होती है, वो अपने पिता के भाई के घर को अपना घर कहती है। आपस में खटपट हो जाए तो कहते मेरे घर आ जाए तो तेरे को खबर दूंगी, तेरी मेरा घर है, अपना घर मानती है पक्का एकदम। और दूसरे भी मानते हैं भाई इनके लड़की का घर है, तो मेरा घर है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी भौजाई है, सब वो मानती है। घर को और चीजों को संभाल कर रखती है, थोड़ी बहुत चीज बास ले जाती है, पोटा सुकर बास लिया, छाना सुकर लिया, छोटी मोटी चीजें रखती घर में, मेरा घर में चाहिए। बड़ी हो गई, सियानी हो गई, अब भाई भाई का ठिकाना कर दो, भाई का संबंध कर दो, संबंध कर दिया, ब्याह कर दिया। ब्याह करते ही अब तो महाराज बेटे परावधन अपनी नहीं, अब बेटी अपनी नहीं, और बेटी अपना घर नहीं मानती, अब चली जाती है। तो इसको मैं अपना बदलना आता है कि बदलना है क्या? उस बाई को बाई कहते हैं, कुंवारी लड़की है बाई कहते हैं, भाई कह बेटा कहकर ऐसे कई बोलते थे, और बोलने में नाम लेते उसका भाई के जगह से जग जाती। अब बहू होकर के चली गई सासरे, तो सासरे भी नहीं, यू कहते नींद जाओ, इतना नाम एक दिन में बदल गया। बिरनी माँ ने कहा नहीं, बाप ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, काके ने कहा नहीं, काकी ने कहा नहीं, बहन ने कहा नहीं, किसने बिरनी नहीं कहा, अभ्यास है ही नहीं उसका। अभ्यास पहले हो जाए तो भाई अभ्यास हो गया, किसी ने नहीं कहा। अब बहू बिरनी कैसे उठ जाती है, क्या हुआ कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं अब वीरनी हो गई, मैं बहू हो गई, घर पर भी अवस्था छोटी है, ब्याह भी घर में खेलती है, कभी ऐसे न्यूज पूछने लग जाए, अरे भाई क्या कर रहे थे, तेरा ब्याह हो गया है, ठीक बोलो, ठीक चलो, ठीक बोलो, तेरा ब्याह हो गया, अच्छा तो बोले भाई ठीक बात है भाई, ब्याह हो गया, अब एक रात रात में बड़ी हो गई, वो तो वैसे ही खेलती है, वैसे ही कूदती है, वैसे ही है, वो तो बच्ची है, सबके सामने बालिका है, हमारी लड़की है, कन्या है, पर देख भाई तेरा ब्याह हो गया है, नहीं ठीक बोलो, तो सच समझ रहती है, ठीक है ब्याह हो गया है, क्या हुआ, मैंपन बदल गया, मैंपन, अब कुंवारी छोरी थी, कुंवारी नहीं रही है, ब्याह हो गया है, ऐसे ही लड़के खेलते हैं, उनका ब्याह हो जाता है, तो भाई अब कमाओ, नहीं खाओगी क्या, फिर ब्याह हुआ है। एक घर की बात बताऊं, सुनी हुई बात है, सच्ची है, कल्पना तो भगवान जाने, सेठ थे, शांत हो गए, लड़का 10-12-15 साल का लड़का था, माता रही और सेठ चल रही है, तो माता ने उसका बड़ा पालन किया, पढ़ा लिखा करके उसे किया, जिस किसी तरह से बालक का भला हो ऐसे पढ़ा करके होशियार किया, बड़ा हो गया, माँ ने विवाह करा दिया, भाई बच्चे को विवाह करा दो, ब्याह कर दिया, अब 15-20 साल का हो गया, माँ जब रसोई पुरुष है तो बेटा आओ जिम लो, और जिम ले बेटा ठंडी रोटी खा ले, गर्मा गर्म रसोई बनी हुई, और माँ कह रही बेटा ठंडी रोटी खा लो, रोटी खा ले, माँ वो पुरुष जब कह दे बेटा हो लो ठंडी रोटी खा लो, एक दिन माँ के कहीं मंदिर जाने का काम पड़ गया, तो क्या देखो बीजनी छोरा आवे तो उसको परोस देना और कह देना ठंडी रोटी खा लो, कह देना है ठीक है सर, कह दिया, लड़का आया जीवन में माँ कहे माँ तो काम गया है, आपकी माँ तो रोटी परोसी पुरुष कर लो ठंडी रोटी खा लो, अरे माँ तो कैसे कैसे ये भी कहने लगी, सेक गई ठंडी रोटी, बता ठंडी कैसे, गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म साग सभी, लो ठंडी रोटी खा लो, झूठ बोलती है, नहीं खाऊंगा तो, ये कोई बात परंपरा ही सीख गई सभी, माँ कहती तो कैसे तू भी सीख गई, बोल ठंडी कैसे, कैसा ये मेरा पता नहीं, आपकी माता जी कह गई थी कि रसोई पुरुष कहते बेटा ठंडी रोटी खा लो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे बिना तुम भी कह देना ठंडी रोटी खा लो, भोजन नहीं किया, माँ आई कहे छोरे रोटी खाई भरा तो कुछ रूस गए, मेरे को ठंडी रोटी कैसे कहती है, तो गर्म गर्म रोटी बना रहा है, साग रोटी सब कुछ ताजा ताजा बनाया हुआ, और कहते ठंडी रोटी खा लो, ये क्या बात है, माँ ने कह रहे बेटा भोजन नहीं गया, भोजन कैसे करे मारा, तू तो कह दीजिए सब सह लिया, माँ है कोई बात कह दे तो कह दे मैं सह लिया, परंतु ये तो यही सीखी, यही कहती है कि ठंडी रोटी खा लो, माँ ठंडी रोटी कैसे हुई बताओ, माँ ने पूछा बेटा गर्म रोटी कौन सी होती है, ठंडी रोटी कौन सी होती है, फर्क क्या है इसमें, कैसी फर्क, कल परसों की पूरी पुरानी बनाई हुई रोटी होती है ठंडी, और अब की बनाई होती है गर्म, तो वो गर्म रोटी ठंडी रोटी कैसे हुई, माँ बोली बेटा ये तेरे जो अबार रोटी है कपड़ा है सब तो चलता है, तो ये तेरा कमाया हुआ है बाप का, किसी पिताजी कमाया हुआ है, तो पुरानी कमाई पुरानी रोटी ठंडी होती है कि नहीं, ये तो ठंडी रोटी है, गर्म रोटी तब होगी जो तू कमा कर लावेगा उसने रसोई बनेगी वो होगी गर्मा गर्म रसोई, ये तो ठंडी है, पुरानी चीज है पुरानी तो ठंडी रोटी होती है, गर्म कैसे हुई, तो माँ अब गर्म रोटी खाऊंगा मैं तो, निकल गया बड़ा माँ के बाजार तो चार छोटा भूखा पंथ जाकर के कुछ पैसे पास उसे रोटी खाई और काम करने लगा। अब कहीं भी काम करने लगे तो काम करने वाले कुछ तो मिल ही जाए, आजकल तो बहुत ज्यादा मिलता है, वो मिल गया। और फिर हम राज अब साथियों के साथ में गया, माँ ने भी लोगों को कहा रे भाई छोड़ी के करो सहायता, अब रुपया कमा लिया उसने, अब रुपया कमा कर आया पैसा, माँ ने बड़ा आनंद मनाया, हृदय लगाया, आरती करी, पूजा करी, बेटा बहुत ठीक है, अब हम गर्मा गर्म रोटी खाओ, अब गर्म रोटी हो गई, नहीं तो वो तो ठंडी रोटी थी। ये तो एक कहानी है। तात्पर्य क्या है कि अपने बढ़िया बढ़िया चीज खरी कमाई की रोटी है वो तो है गर्मा गर्म बढ़िया, और बाप दादा ने कमाई खाना अपने काम नहीं करना वो ठंडी रोटी, और झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करो तो वो तो बहुत खराब रोटी, वो रोटी तो बहुत खराब है, अंधकरण मेला होगा, बीमारी हो जाएगी खराब रोटी से। रोजी की रोटी को दुष्पल की कमाई लो जीते खाने पर हुआ विकार, ऐसा पद आता है। रोजी की रोटी रोजाना खाते हैं उसमें जो रिश्वत लेने तो रोटी तो है कमाई नहीं वो, अरे ये है साग जो रोटी कपड़ी करी, कपट किया, ठगी करी, धोखेबाजी करी, घूस खाई, सूंघ लेनी, ये हो गए साथ में साग पत्ती, उनसे खाई तो हुआ बेकार, अब होगा रोग, अब मरोगे, बीमारी होगी, दुख लगेगा। तो ऐसी कुपथ्य करे वो जो संताप जंत का पथ्य भोजन न होगा, जो अपथ्य भोजी होगा उसको तो रोग संतप्त करेंगे भाई। तो ऐसी रोटी खाते हो तो क्या दशा होगी, बड़ी भयंकर बीमारी होगी, और वो दुख पाना पड़ेगा खुद को अपने को, वो दूसरे को नहीं, क्योंकि कुपथ्य करते हो, कुपथ्य का फल तो भाई रोग होता है, उसे दुख होता है। तो ऐसे मत करो, खरी कमाई का वो तो वो है, और कमाई अपनी और खरी कमाई की रोटी वो रोटी है गर्मा गर्म, ऐसा बढ़िया भोजन करो। एक संत से मैंने सुना, वो एक नई बात याद आ गई, वो कहा भोजन बढ़िया कौन सा, सबसे बढ़िया भोजन कौन सा है, तो संत ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी, खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आवे, खाने वाला लेता है सुख और खिलाने वाला सुख लेता है, जिसमें खिलाने वाले को ज्यादा खुशी होती है वो होता है, खाने वाले की अपेक्षा भी ज्यादा प्रसन्नता उसकी होती है वो होता है बढ़िया भोजन, और खाने वाले खिलाने दोनों को सुख होता है वो है साधारण भोजन, और खिलाने वाले को तो दुख होता है आएगी आपस कहीं से रोटी तो घाल नहीं पड़ेगी लो भी खाओ, तो वो सबसे नीचा भोजन वो खराब भोजन, तो भोजन शुद्ध नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अरे पता है हक खाए वो तो बहुत ही खराब है, चोरी करे, डाका डाले, ठगी करे, धोखेबाजी करे, इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, और गुजर से चोरी तोड़ने करने सब में कपट करे, तो वो तो बहुत पाप की बात है। लेता तो बच्चा ले भाई, देता कसर पावरी, पिंपा पर देखिए बाजारों में बावरी, बावरी लूटे जो बाजारों में बावरी, सीधी सीधी बात हुई, दर्शावे जग में दया, अरे पाप उठावे पोत, खत में चित में हत में चित में हाथ में खत में मत में खोट, लोगों में तो दरा दिशावे, अरे खोट जो किसी बड़ी है, हित में चित में हाथ में, कि हित करना चाहे तो बात हित ही दिखावे, मन में खोट कि किस तरह से वो लूटे, किस तरह से वो ठगे, हित में चित में हाथ में मत में खत में खोट, लोग तोड़े तो देखो सा, देख लो बस है ना, से देख लो दूध कैसे रहा। तो ऐसे हाथे तोल में मोल में व्यापार होता है, तोल से व्यापार होता है, गिनती से व्यापार होता है, नाप से गिनती होता है, नाप दो तरह का होता है, एक नाप तरह से बर्तन लेकर इससे नाप किया जाता है, एक ऐसे नाप किया जाता है, तो नाप दो तरह का होता है, तो नाप से गिनती से और तोल से इससे व्यापार होता है, तो लेने में तो ज्यादा ज्यादा दे, अगर देने देने बेहतर हो तो गज को लेकर ऐसे खैस कर जाकर पूरा नापे तो पूजा नहीं होगा। दस गज है ले जाओ, दस गज में आठ दस आंगुल तो कम हो ही जाएगा, तो नाप में भी कम देना और ले लेना चाहते। मैंने कई कई बातें सुनी है जो व्यापार की, ये टाट होता है ना झूठ, इसको बातें करने वाले भी लेने वाले क्या करते हैं, वो जाते हैं तो बात सुनी महाराज, पोथी लिखी जिसमें लिखते हैं वो भी शेर दो शेर की पोथी, वो तोड़ने लगे जड़ तोड़ने लगे तो चाकरी में रख दी चट सी, अब उतना तो अधिक ले ही लिया, कोई कुछ कुछ भर देते हैं और मिर्चा है टाट है झूठ है उसमें थोड़ा डाल दे पानी, पानी डाल दे बारी पैसा बढ़ जाए सही तरह से, तो वे पानी का पान पैसा ले ले। हम गए थे पूरी रहे कुछ दिन, तो पूरी में वहाँ आवश्यकता थी कि भाई रस्सी बांध दो कपड़ा सुवाने का, हमें बीती हुई बात बता से मंगाया, तो वो खेतों की डाढ़ी होती झोटी होती नारियल ली इसकी बनी हुई रस्सी, मैंने देखा तो गीली गीली, अब लोग तोल कर दे सब, अब गीली कर दे वैसी भार ज्यादा सूखा हुआ तोड़ दे तोड़ गए नहीं, तो ऐसे करके कितने कितने करते हैं। मैंने सुनी बहुत सी बातें हैं, क्यों ज्यादा आपका समय लें, कपट करके दूसरे को ठगने की बात है, वो जानते तो हम दूसरों को ठगते हैं पर खुद के बड़ी भाई ठगाई होती है, खुद के जितना नुकसान होता है इतना उस ग्राहक के नुकसान नहीं होता है, ग्राहक के तो पैसों का नुकसान होता है, आपके भाव का नुकसान होता है, वो नुकसान साथ में चलेगा, पैसा साथ में नहीं चलेगा, यहाँ रहने वाला पैसा खर्च किया है और आपने साथ में चलने वाले में पाप भर दिया, अन्याय भर दिया, झूठ कपट बेईमानी भर ली, तो वो बेईमानी साथ चलेगी, दुष्कर्म भर लिए, पाप कर्म भर लिए, विश्वासघात भर लिया। भाइयों बहनों याद रखो, अब लड़ाई करते हैं आपस में, बहनों बहनों लड़ाई बोले, सास बहु लड़ाई लड़ाई करे, दीरानी जिजानी लड़ाई करे, नंद हो जाए आपस में लड़ाई करे, बड़ा भारी विष हो जाएगा, अंतर्ग्रम पैदा हो जाएगा, लड़ाई में दोनों को पाप लगता है, जो लड़ते हैं कोई पुण्य का भागी नहीं होता। अपने मारवाड़ी कहावत है, लड़ाई में किसो लड्डू बटे, ये लड्डू बटते नहीं, इनमें तो खराबी खराबी होती है, कितना अंतगण खराब होता है, एक एक कही दूसरे माने गोर के दोनों ज्ञानी, एक एक कही दूसरे उठापे गोर के दोनों ही पापी, लड़ाई क्यों करे, वो कैसे ऐसे करो, अच्छा देख रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहवे क्यों है, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही ठीक है, मैं आपको दे दी, अब ऐसे करेंगे, अब यूं करो, अच्छा ऐसे करो, ऐसे करो भी ऐसे करेंगे, ये एक इतनी मूल्यवान बात है कि मैं बात कह नहीं सकता, इतनी मूल्यवान बात है, न्याय युक्त बात है, किसे कहते हैं न्याय, अन्याय की बात कहते तो हाथ जोड़ ले माफी मांग रहे कि भाई ऐसा तो मैं नहीं करूंगा, अन्याय बात कह दे अच्छी बात कह दी, थोड़ी बहुत कमी भी है कोई ऐसा नहीं, जी हाँ जो जो ये बड़ों की बड़ी भारी सेवा है, आज्ञा समन सुसाहेब सेवा, रामायण में आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं है, ये बहना आपस में विचार करे, सास भी हमारी पूजनीय माँ है, पूजनीय माँ से पढ़ करके है, सुहाग के बस में आप समझो मैं सौभाग्यवती हूँ, मैं सुहागन हूँ, वो सुहागन रूपी फल किस वृक्ष का है, वो सासु रूपी वृक्ष का फल है, ये वो आपके सौभाग्य की माता है, आपके सौभाग्य की जननी है, उसका आदर करो सत्कार करो, वो कुछ भी कह दे तो सुन लो, आदर पूर्वक सुन लो, माँ है बूढ़ा है। एक लड़के की बात सुनी कि वो स्त्री है जो कहने लगी कि देखो आपकी माँ मेरे को गाली दे दी, मैंने तिरस्कार दिया, मैं उगाली दी, तो गाली दी भाई सहल कृपा मेरी ऐसी ऐसी गाली, मेरे पास है दिया उगने सही थी, बस माँ गाली दे मेरे को ऐसी गाली दी। तो लड़का बोला के देख मेरे सामने देख, मेरी माँ है, मेरी बात माने तो मेरी माँ की गाली तू सुन ले। कि कैसे सुन लू, मैं जब ब्याहने को आया तेरे वहां पर रोटी खाते रोटी भोजन करते समय जवान जवान छोरिया उन्होंने गालियां गाई, वो गाली मैंने सब सुनी तेरे नाते, अगर तेरा नाता नहीं तो मेरे कोई गाली देख और मैं क्यों सुनता पता, तेरे नाते सुनी मैं, तेरे साथ संबंध है, नहीं तो मेरे गाली देने वाला कौन बचा। अरे भाई रोटी खावारी गाली दे, अरे गाली दे वो रोटी खानी जाए, कोई देर गाली दे रोटी खराब हो कोई खाएगा वो छोड़ छोड़ देगा, वो हमने रोटी खाई और हंस कर राजी हुए, क्यों कि तेरे साथ संबंध है। तो तेरे साथ संबंध से हमने गाली सुनी, अब मेरी माँ गाली दे तो ब्याज सहित वे गालियां चुकाओ, मैंने सुनी है सब नहीं ऐसी गाली, तुम नाराज क्यों होती है, मेरी माँ है बहनी खुशी आ चुकी से माँ है, मेरी पूजनीय माँ है, आदरणीय माँ है, मेरी माता माता का दर्जा सबसे ऊंचा बताया गया है, इस बात तू कहना मान माँ का, माँ कह जैसे काम कर, देख माँ राजी होगी मैं राजी होऊंगा, अच्छे अच्छे पुरुष संत महात्मा राजी होंगे भगवान कि कितनी अच्छी है बहू जो माँ सास का कहना करती है, ऐसे कहना करो कितना बड़े हो जाए आपका कल्याण हो जाए। देखो सास हो जिठानी ये बड़ी जो कुछ तिरस्कार करती है तुम्हारे को कुछ भी तार ना करे, पर तुम्हारे बुखार आ जाए कुछ हो जाए तो माँ के दुख होता है वो दवाई करावेगी, बेटी को बुलावेगी, हमारे बहू कैसे ठीक हो जाए, जैसे कुछ बताने माँ मारती पर मारने नहीं देती, ऐसे माँ कुछ भी कह दे सासू पर बहू के बीमारी होने पर दुख होगा तो सासू को होगा, और ये चिकनी चुपड़ी बातें जो पड़ोसन कहती है ना ये कोई नजीक नहीं आएगी, वहाँ आने वाले नजीक आने माई है वो सास है जिठानी है वे घरवाली आकर के आपकी सहायता करेंगे रक्षा करेंगे, तो उनका कहना मानो उनका आदर करो, ऊपर से गाली देखो जिसको मत देखो हृदय देखो, तुम हृदय हृदय से तुम्हारा बुरा चाहती है क्या, कोई माँ ऐसी होगी कोई सास जो बहू का बुरा चाहे, ऐसा नहीं हो सकता, भीतर से दया रहती है, पाय करके अच्छी दया रहती है, प्रार करके भला चाहती है, कोई ताड़ना करे तो उसके सुधार के लिए करती है, उनके बैर है कोई विरोध है द्वेष है, सज्जनों भाव है उन बड़े भारी कीमती है, क्रिया इतनी कीमती नहीं है जितना भाव है, तो भाव उसका सदा दया का रहता है कृपा का रहता है हित करने का रहता है, और हित की पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, तो दूसरे का हित है वो सोचना है बहुत बढ़िया बात है, तो सास है जिठानी है घर की बड़ी बूढ़ी है वे सदा ही छोटी बालिका का हित चाहते हैं, बहू होती है तो उसका हित चाहती है सास, तो उसके हित की तरफ ख्याल करो, कुछ भी कहे दवाई देता है वैद्य वो कड़वी भी हो परंतु तुम्हारे रोग दूर करने के लिए काम की है, खाने में तो कड़वी आती है जिह्वा को तो ठीक नहीं लगती पर न लगे तो भी तुम्हारे रोग को दूर करेगी, इस तरह से बड़ों की जो गाड़ी है वो भी गाड़ी में भी हित भरा हुआ गाड़ी क्यों देते हैं, वो क्यों नाराज होती है कि कोई न कोई गलती अपने करी है उस गलती का सुधार करने के लिए वे चालना करती है, ये सोचते नहीं हुआ थोड़ा विचार करो, तुम्हारा भला चाहती है इस बात से तारना करके भाई तुम रस्ती पर रहो ठीक तरह से चलो तो ठीक तरह से चलो तो हमारा तुम्हारा कल्याण होगा, और जो सहलेगी ज्यादा तो दो में लड़ाई होने पर प्राय लोग छोटे का दोष मानते हैं कि छोटे का दोष है, परंतु कहीं कहीं मैंने सुनी अजमेर में एक बात सुनी, सास बहुत डरती है तो उसे कहते हैं कि सास का खराब है। लोग छोटे को खराब कहते हैं, बड़ा तो कह दे तो कह दे, पर छोटे को तो सुनना चाहिए, परंतु ज्यादा गलती करती है तो लोग सास की निंदा करते थे, बहु की गलती करते थे, ऐसा भी मैंने सुना है। नहीं तो कहीं लड़ाई हो तो छोटे का कसूर है, तुमने गलती करी है, नहीं तो बड़े क्यों करते हैं, वो तो भलाई चाहते हैं, वो क्यों गुस्सा करे तुम्हारे ऊपर, रिश क्यों करे, इस आप विचार करो। उनके कोई थोड़ा ही मतलब है, संबंध है, कुटुम्ब है, छोरा को ब्याह कर लाया है तो छोरे का ही अंग है। एक कलकत्ते की बात है, सास और बहू आई तो बहू बहुत संकोच भरी हुई थी, कल महाराज मेरा शरीर बीमार हो गया, अब माता जी को मेरी चट्टी भी गिरगट कर रही, कपड़ा मेरा धोना पड़ता है, मैं सास जी हूँ, दुखी हो गई। दुखी हुई तो मैंने कहा दुखी क्यों होती हो, तुम्हारा शरीर ठीक हो तो सास की सेवा करो, अगर तुम्हारा पालन करे तो इसमें तुम दुखी क्यों होती हो। जब इसका तुम्हारा पति था छोटा, क्या उस समय में माँ ने टट्टी नहीं फेंकी थी, क्या उसके पेशाब साफ नहीं किया था, क्या माँ ने स्नान नहीं किया था, कराया था सभी कुछ कराया, अब तुम उसी की अंग हो, उसको क्या तुम संकोच क्यों करे। माँ कह देखो तुम्हारा बेटा ही तो है, ये बेटा का तो अंग है, बेटे की अर्धांगिनी है, बेटा और बहू दोनों होकर के पूरा एक ग्रस्त है, किसी सेवा करो। तो वो सास को करते थे सेवा, बहू के मेरे को संकोच बहुत है, संकोच आंटी ये बात ठीक है, संकोच होता है बड़े बूढ़ों से सेवा लेने में संकोच होता है, तो वही सेवा तो और कौन करे बताओ। अब बीमार अवस्था होगी, अपनी शक्ति नहीं है तो ऐसी अवस्था में कौन करे, सेवा तो अपना होगा वही करेगा, छोटा करेगा, बड़ा ही करेगा, समान अवस्था वाला ही करेगा। अब आरक्षित अवस्था में और जिस समय में निर्बल अवस्था है तो उस समय तो करेंगे ही सेवा, तो सेवा करने में कोई पाप की बात नहीं, कोई दोष की बात नहीं है। मैं उसको कुछ समझाया कि तू सेवा ले रहे तेरे को पाप नहीं लगेगा, भीतर से भाव से पूजा कर, उनके चरणों में प्रणाम कर, मन मन से नमस्कार कर, उधर से सेवा लेनी पड़ती है, तो जहाँ तक बने माँ को सेवा कम करने के लिए उतना अच्छा है, पर कर दे तो संकोच क्यों करे, और माँ की सेवा करो, शरीर ठीक हो तो माँ जी की सेवा करो, पति पत्नी है उनमें भी आपस में सेवा करो। इनमें देखो सेवा करने की एक आदत इन स्त्री समाज में है, ऐसी पुरुष समाज में नहीं है। ये दिखने में तो बरोबर दिखते हैं, परंतु सेवा करने में ऐसी बात है, बड़े अच्छे अच्छे सज्जनों की मैंने बात सुनी है, बड़े अच्छे आदरणीय सज्जनों की, कहते मेरे को बुखार है, मेरी स्त्री को भी बुखार है, तो बुखार में उठ करके जल गर्म कर देगी, सिर दबाएगी, सेवा करेगी, उसके बुखार है मेरे को बुखार, तो मैं उठ कर नहीं करता हूँ सेवा ऐसी, मैं ऐसा भाई उसकी स्त्री की सेवा करूँ नहीं करता हूँ, वो दुकान में मेरी सेवा करे, तो ऐसे ही उनकी बात होती है। मैंने देखे ऐसे बूढ़े बहुत वृद्धावस्था वाले जिनमें महाराज वो सास जाती है, जब वो सत्संग करने के लिए आए थे सज्जन, तो उनकी स्त्री बूढ़ी हो गई तो सास मिल गई, ये मैंने देखा है, जोधपुर की बात है, आई हुई थी वहां दूसरे गांव से, तो वो पति के साथ रहती है, पति की सेवा करना चाहती है, पति कहते हैं आप इतनी बुद्धि हो गई है, उस मंत्र के नहीं सास सेवा बहुत की सेवा करे तो उनको कितनी करूंगी। माँ बाप में कथा आती है, जब महाराजा युधिष्ठिर का राज्य हो गया, कई वर्ष हो गए राजा होने को, ऐसी बात हो गई, तो फिर धृतराष्ट्र और गांधारी इन्होंने कहा कि हम कुछ यज्ञ करना चाहते हैं, दान पूर्ण करना चाहते हैं, बड़ के भी मर गए हमारे छोटे, लड़के भी मर गए सभी, 100 के 100 मारे गए पुत्र, अब उनके मैं कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे यज्ञ और होम कुछ दान पूर्ण करना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि देखो आप पिता के समाज हमारे बड़े बाप हो, ताऊ हो आप, इस वास्ते संजय रुका जा कह दो कि मेरे जितने राज्य की संपत्ति है वो सब की सब आप ले दे सकते हैं, जुटा सकते हैं, खूब दान पुण्य घर पेट करके प्रसन्न राजी मन से। मैं तो आपका बेटा ही तो हूँ, आपके छोटे भाई का बेटा तो आपका ही बेटा ही हूँ, आप करो। और मेरी व्यक्तिगत मेरा महल है, मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, वो भी देने का आपको अधिकार है, और मैं खुला दान करूँ। वो खुला दान की बात करते भीमसेन बोल उठा, किसा खुला नहीं तेरे बेटे का राज थोड़ा ही है तो खुला दान करे, कितना करोगे दान? भीम जिसमें अरे चुप रह, अदान करता है, चुप रह, सब कुछ करने का अधिकार है, ये पिता है हमारे, बड़े पिता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि स्वराज और मेरी संपत्ति और अर्जुन की नकुल सहदेव की संपत्ति भी दे सकते हो, भीम के लिए नहीं बोले भीम भी दे सकते हो। तो और सत्य कैसे कहे, मेरे को अधिकार ही नहीं दिया, तो वो बोले पहले मेरी मेरे भाइयों के लिए संपत्ति है अर्जुन आदि की, वो प्राइवेट हमारा घर है, हमारा महल है, वो संपत्ति भी आप दे सकते हो, आप संकोच क्यों करो। फिर जाकर प्रार्थना करी, प्रार्थना करी तो बोले कि देखो बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारी तरफ से कमी नहीं रही, भोजन आते थे बढ़िया बढ़िया, सब चीजें राजकीय भोजन बढ़िया, बड़ी मान है, वो भोजन नहीं किया, हम साधारण भोजन करके अपना गुजर चलता चलाते थे, नौकरों को वो दे देते थे, वो नौकर खाते थे, हम ऐसा नहीं कहते। महाराज युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ, उनके आगे देखो बड़े बूढ़ों की सेवा औरों के भरोसे नहीं रखनी चाहिए, स्वयं हाथ से करनी चाहिए। आज अगर मैं हाथ से सेवा करता तो मेरे को पश्चाताप करना नहीं पड़ता। और कह ये पलंग बढ़िया बढ़िया, हम नीचे सोते हैं साधारण रीति से, हम आराम से नहीं सोते, सो के सो बेटा मारे गए, वो कोई रही नहीं, जिनको दुख दिया जान जान करके वो इतनी सेवा कर रहा है तो हम पीस ले रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि बड़ी पश्चाताप की बात है, अब इसे शिक्षा देंगे मैं, अब करूँ क्या, शिक्षा देनी चाहिए, बड़ों की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, नौकरों को भरोसे नहीं रखनी चाहिए। तो आज मेरे को मिले ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अब वही सेवा करी तो सब प्रजा करिए इकट्ठी, इकट्ठी करके धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो आप प्रजा हो, हमारे बेटे ने कोई अन्याय किया हो, दुर्योधन ने कोई दुख दिया हो तो उस दुख की जो दुशासन आदि दिया हो तो हम उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, माफ करे। तो मैं बोली कि नहीं साहब हमारे को तुमने दिया, सारे आपस के करे थे जानो, हमारे तो बड़ा सुख दिया है, बड़ा आराम दिया है, जैसे युधिष्ठिर देते थे ऐसे ही दुर्योधन देते थे, वरम विरोध हो भी समम महात्म्य भी, दुनिया में लिखा है भारवी ने कि बड़ों के साथ विरोध भी बड़ा अच्छा होता है। ये दुर्योधन समझता है कि युधिष्ठिर को दुनिया क्यों चाहती है, तो दुर्योधन देखता है कि युधिष्ठिर बर्ताव कैसा करते थे तो वैसा बर्ताव मैं भी प्रजा के साथ करूं, तो प्रजा के साथ बर्ताव किया, दूसरों के साथ बर्ताव बड़ा अच्छा किया, युधिष्ठिर महाराज को याद करके युधिष्ठिर महाराज के बर्ताव को देख देख कर उसने सुंदर बर्ताव किया। इस बात से भारवी ने लिखा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बैर भी बड़ा अच्छा है, जो सुधार कर दे, जो दिन सुधर गया। तो प्रजा ने कहा सा हमारे को तो दुख नहीं दिया, हमारे को तो आराम ही दिया है दुर्योधन ने, इस बात से माफी की कोई बात नहीं है, हम तो आपके लिए नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज सदैव ऐसे आराम देते हैं, वहां से फिर कहा भाई अब दे दिया है आशीर्वाद, दे भी अन्न के पहाड़ की तरह पहाड़ लगा दिए, खूब अनुदान किया, खूब दान पुण्य किया, और युधिष्ठिर अब तो हम वनवास में जाएंगे। महाराज क्या करते हो, आप वृद्ध हो, अब मैं अपने हाथ से सेवा करूंगा, पहले हाथ से नहीं करी जिसका पश्चाताप होता है, अब मैं हाथ से सेवा करूंगा। हो नहीं बेटा अब नहीं रहेंगे, अब तो हम जाएंगे। विदुर जी ने बहुत उनको समझाया, भीमसेन तो कभी कभी महाराज तर्क मार देता था, कड़वी बात कह देता था, परंतु दूसरे तो सब सेवा करते, ऋषि महाराज बहुत नम्रता से जाने लगे तो माता कुंती ने कहा कि मैं साथ में जाऊंगी। तो माता जी आप क्यों जाओ, हम बहुत जाने वाले, द्रौपदी ने सुभद्रा ने कहा कि हम लोग साथ चले जाए इनके, ना बेटा तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरी जेठानी है, मेरी सास की तरह पूजनीय है, आदरणीय है, उनकी सेवा मैं खुद करूंगी, तुम्हारे को नहीं। अर्जुन ने कहा, नकुल सहदेव ने कहा कि माँ हम तुम्हारे साथ चलेंगे, ना बेटा आप नहीं, मैं जाऊंगी, मेरी जेठानी की सेवा करने का मेरे को अधिकार है, तुम्हारे को नहीं है। कुंती माता वृद्ध होने पर भी साथ में कई दिन गए, विदुर जी गए और गंधारी गए, विष्णु की लाठी पकड़ता है संजय चलता है, इसी कुंती माता ले जाती गंधारी को, इस वजह से उसकी आंखें बांधी को अंधे थे ही, ऐसे गए, कुटिया बना कर देती है, जल भरती है माता कुंती, तो वर्णन आता है बड़े बड़े ऋषि मुनि देखते हैं कि जिसके पानी भरेगा कभी खाम नहीं पड़ा, वो माता कुंती आज गांधारी के यहाँ पानी भर करके और नदी से ला करके देती है, जल भरती है, सब तरह से सेवा करती है कि मेरी जेठानी है। और उनका कृत्य क्या हुआ कि जब पांडव वनवास में चले गए तो गांधारी ये कुंती माता विदुर जी के घर पर रही, विदुर जी ने कहा आप मेरी माँ के समान हो, आप यहाँ बैठाओ, आप रहो यहाँ पर, खूब सेवा करी, अच्छी तरह से विदुर के घर पर रही। धृतराष्ट्र महाराज गांधारी ने नहीं कहा भाई कुंती भूखी है प्यासी है, बेटा और बहू सब जंगल में चले गए हैं, वनवास में चले गए हैं, ऐसी जिठाने की सेवा खुद करी उसने, तब उनके महाराज युधिष्ठिर जैसे बेटा हुए, जो अच्छा स्वभाव होगा उसके संतान बड़े अच्छे होंगे, माँ का स्वभाव आता है संतान पर, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो ही थोड़ा थोड़ा आता ही, माँ का जैसे लोगों में क्या होते है नर नानण जाए, नर का नानण का स्वभाव आता है उसमें, तो माँ का ज्यादा स्वभाव आता है, माँ का भाव ज्यादा आता है कि माँ के पेट में रहा, माँ की गोदी में पड़ा, खाना पीना उठना बैठना बोलना चलना सब माँ ने सिखाया, आधा थोड़ा थे खाना का वो तो माँ खिलाती पहले तो कहीं खाने लगे तो क्या करे यूं करे यूं मुंह यूं करे हाथ यूं कर ले इनके हाथ तो यूं करूंगा सीखते है अभी कपड़ा खराब कर लेता है माँ कर क्या करता है छोटी अवस्था में टट्टी के साथ फिरे और ये लकीर के बैठ बैठे क्या करता है उसको पता ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ, अब क्या सुनती होती क्या सुनती हुई, ये आपकी हमारी आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं हम सुनाते हैं पर दस हमारी भी कोई वैसी थी, उस माँ ने पालन किया हमारा, तो माँ का ऋण कोई उतार नहीं सकता, कोई उतार नहीं, माँ का ऋण उतार दे किसकी हिम्मत करे उतार दे नहीं उतार सकते, आप बीमार हो जाते हो और माँ ठीक है तो आपके खाट के पास बैठी रहती है सेवा करती है, ज्यादा बीमारी होने पर माँ की शक्ति कम हो जाती है, माँ की बीमारी नहीं है बाकी परंतु माँ की ताकत कम हो जाती है, थोड़ा बीमार है रातों जाकर सेवा करता है, और माँ बीमार हो जाए ये बेटा नहीं ये सेवा नहीं करता, बहु करती है बेटे सेवा नहीं करती, कितनी आश्चर्य की बात है जैसे माँ सेवा करती है, रात्रि में बूढ़ी माँ है कमर झुक गई है लाठी के बल चलती है, अगर बाहर निकले रात्रि का समय है बाहर बेटा सोया है उसको उड़ा देती कपड़ा उड़ा देती, अब बच्चा तो नहीं है वो उसे तो बेटा पोता हो गए परंतु माँ के माँ के वही बच्चा ही है, माँ के तो वही भाव है छोड़े उगड़ जाने ऐसे भाव, ऐसे माँ दया रखती है, तो कुंती माँ इस तरह से मेरा सेवा करती थी, महाभारत तो देखो आप कितनी बढ़िया शिक्षा उसे भरी हुई है, कितनी आनंद की बात कितनी विचित्र बात है, कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर महाराज ने सुना तो विचार किया भाइयों से कहा भाई अब बहुत दिन हो गए हैं हम तो बड़े पिताजी से बड़ी माँ से मिलेंगे जाएंगे दर्शन करने के लिए जहाँ जंगल मिलते हैं वहां पर विदुर जी तो वहां से चले गए, जाकर के एक पेड़ के पास में खड़े रह गए, फिर भाग गए पत्थर में मुंह पत्थर दे करके खड़े रह गए, वहीं प्राण छोड़ दिया। और ये गांधारी और धृतराष्ट्र इनकी सेवा कुंती करती थी, वहां रहती थी। अब वहां हो गया युधिष्ठिर महाराज, तो लोगों ने प्रजा ने कहा साहब आप जाओ हम भी जाएंगे उस बनवाने तपोवन में, हम जाएंगे दर्शन करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज शहर से बाहर जाकर डेरा लगा दिया, 5-7 दिन रहे तो सब लोग प्रजा के अच्छे अच्छे लोग भी साथ में हो गए। अब ये बात सुनी जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों ने, तो वे लोग सब इकट्ठे हुए जिस जहाँ धृतराष्ट्र रहते थे उस आश्रम में आ गए। अब वहां आकर के आप बैठे हैं सभी, तो परिचय देते हैं वहां के लोग, वो युधिष्ठिर महाराज राजा कौन से हैं, जंगल में रहने वाले हैं कि वो जो बैठे हैं बड़े, वो युधिष्ठिर महाराज है। और वो जो बहुत बड़ा है, बड़ा सुना, वो भीमसेन है। और वो जो बैठा है ना पतली पेंडी लंबी पेंडी है, लंबी लंबी आंगे है, ऐसा है ना, वो अर्जुन है। वो जो श्याम रंग है वो अर्जुन है। ये नकुल और सहदेव माता कुंती बैठी है, अभी मिलने के लिए आए कुंती से, तो कुंती माता की गोद में एक तरफ नकुल है, एक देव सहदेव है। ये बैठा कुंती के हाथ, ये जो नकुल सहदेव है माधवी के बेटा, तो कुंती है वो माधवी के पुत्रों का जितना लाड़ प्यार करती थी, युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन को इतना नहीं करती थी, उनका प्यार करती है। जंगल में गए तो दोनों ये सब बैठे, माँ दोनों के बड़ा हाथ है माँ का, इसलिए बैठे माँ की सेवा में बैठे, इसे परिचय दिया है वहां आप देखो इस तरह का बड़ा आता है। अब कितनी भी लिखने बात है, माधुरी जब सती होने लगी है उस समय माधुरी ने कहा कि मैं तो सती होती हूँ, इन बच्चों का पालना आप ही करो, आप ही माँ, माँ तो यही बड़ी माँ है, ये बड़ी रानी थी तो उसने पालन किया है। नकुल और सहदेव कितने प्यार से पड़े हुए माँ बाप के, बेटा हमारी सास के प्यारे पुत्र, उनका क्या दशा हो रही है, रीति में पड़े हैं। महाराज आप जंगल में रहते हो, आप धर्म का पालन करते हो, धर्म की दशा तो देखो, और वो देखो जी आप भीमसेन जो बड़े सूरवीरों को शिक्षा देता था, बड़े बड़े मल्ल युद्ध में सबको पछाड़ देता था, आज भीम के भीमसेन की क्या दशा हो रही है।